पृष्ठ संख्या 151, निराला सापेक्ष आकलन। निराला ने छायावाद के उद्भव युग में काव्य सृजना आरंभ की थी। अनामिका के प्रथम संस्करण का प्रकाश 1922 में हुआ था, किंतु काव्य रचना वह 1916 से ही करने लगे थे। रामविलास शर्मा ने उनका प्रकाश काव्य उन्मेष 1920 में लिखी गई बंधुमय अमल कमल कविता में देखा है और जूही की कली को परवर्ती रचना माना है, किंतु यहाँ यह स्मरणीय है कि निराला ने जूही की कली में कई बार संशोधन किए थे और हर बार उसमें सामसमिकता बढ़ती गई थी। कम से कम तीन पाठ तो मिलते ही हैं। बंधुमय अमल कमल कविता में समासिकता की कमी नहीं, यद्यपि भाषा में वह कसाव नहीं है जो निराला की अपनी चीज है और जो जूही की कली के अंतिम पाठ में देखने को मिलती है। आरंभिक चरण में निराला की काव्य भाषा तत्सम प्रधान समासिकता की ओर अग्रसर रही है और जूही की कली के पाठ भेद में भी इस प्रवृत्ति का साक्ष्य विद्यमान है, जबकि बंधुमय अमल कमल में समसामयिक भाषा का आरंभिक किंतु सिद्ध रूप परिलक्षित होता है। निश्चय ही जूही की कली इससे पहले लिखी गई 1916 के आसपास। इस कविता को लेकर कितना बवेला मचा कहने की जरूरत नहीं। प्रसाद का झरना अनामिका के 4 वर्ष पूर्व प्रकाशित हो चुका था और इससे पहले कि 1913 में उन्हीं का कारण कुसुम निकल चुका था, जिसकी कुछ विशिष्ट कविताएं बाद में झरना में रख दी गई थी। किंतु छायावाद के प्रवर्तक होने के बावजूद उनकी किसी आरंभिक रचना को लेकर उतनी परिचर्चा नहीं हुई जितनी जूही की कली को लेकर। काव्य युग के प्रवर्तक का श्रेय प्रसाद को देते हुए इस वास्तविकता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि छायावाद की पहली ज्वलंत रचना जूही की कली है। प्रसाद का काव्य विकास एक नियत दिशा में क्रमशः होता रहा है और उसमें आवेग और उद्यमता के स्थान पर संकल्पनात्मक मंथरता है, जबकि निराला का काव्यारंभ आवेग और उद्यमता से ही हुआ है। उनके दुर्घर्ष आत्म प्रवाह को रोकने की शक्ति किसी भी बंध प्रतिबंध में नहीं थी, चाहे वह आंतरिक हो या अवयवीय, कथ्य का हो या कि शिल्प का। प्रसाद का रास्ता सन्मिति प्रगति कथा और नवीनता की अवधारणा से पहले की परंपरा को सिद्ध करना अपना सांस्कृतिक दायित्व तो जैसा मानते थे। उन्होंने आरंभ में ब्रजभाषा में रचना की और पुराने छंदों का व्यापक रूप में प्रयोग किया। खड़ी बोली में आने पर भी वह काफी दूर तक वास्तविक छंद की पारंपरिकता से जुड़े रहे, यद्यपि बीच बीच में नव्यता का उच्छलन बराबर होता रहा। झरना तक ही कविताओं में सह समन्वय अथवा संतुलन की मनोभूमि विद्यमान है। निराला इस प्रकार के समझौते में विश्वास नहीं करते थे। वह क्रांति चेता थे और आघात देना ही उनकी निर्विकल्प पद्धति थी। जूही की कली का प्रकाशन आधुनिक कविता के इतिहास में एक हादसा ही है। पृष्ठ संख्या 152, जिसने पुरानी काव्यगत धारणाओं को सहसा झटक कर तोड़ दिया था। मजे की बात यह है कि इस रचना पर अश्लीलता का आरोप लगाया गया और वह भी उन आचार्यों के द्वारा जो उस रीतकालीन परंपरा के पक्षधर थे, जिसमें परकीय प्रणय की लीलाएं चटखारे लेकर गाई गई हैं। निराला ने निश्चय ही पुराने कवियों से आगे बढ़कर उद्याम श्रृंगार प्रस्तुत किया, विलास लीला को प्रचंड देह भोग में ढाल दिया, किंतु वह अश्लील अथवा उच्च श्रृंखल नहीं हुए। उनकी काव्य नायिका सुहाग भरी है, स्वकीया है और नायक की निर्दयता उसकी चिर प्रतीक्षित उपलब्धि है, शायद चिर परिचित भी। जाग कर भी न जागने पर छद्म निर्दालय, बंकिम विशाल नेत्र मूंदे रहना और अंत में विस्मय अभिनय करते हुए चौंक पड़ना और नम्र मुख हंसना लिखना एक अति रंजक और मादक वातावरण की सृष्टि करते हैं। प्रसाद इतना साहस नहीं कर सकते थे। उन्हें दैहिक निकटता के प्रसंगों में या तो रूपकीय अलंकृति और अप्रस्तुत विपर्यय का आश्रय लेना पड़ा है या फिर स्थूल सांकेतिकता का। वस्तुतः उसमें छायावादी अभिजात की ही विशिष्टता है, जबकि निराला यथार्थ को उद्यमता को नजरअंदाज करना अपने ही प्रति अन्याय मानते हैं। यों उन्होंने देह भोग की परिणति के रूप में उच्च मानवीयता और ऊर्ध्वमुखी उदारता की ओर सदैव निर्देश किया है, किंतु वह भौतिकता की ही मानसिकता है, प्रत्यात्मकता आदर्श की नहीं, जो कि प्रसाद में आद्योपांत मिलेगी। यही कारण है कि जितने जीवंत रूप में निराला उरे सके हैं उतने प्रसाद नहीं। प्रसाद ने अनेक स्थान पर मानसिकता का उद्घाटन विशेष बारीकी और भावात्मक संवेदनशीलता के साथ किया है। दैहिकता और मानसिकता श्रृंगार के ये दोहरे स्तर पंत और महादेवी के काव्य में भी विद्यमान है और उनमें छायावादी औदात्य भी है, किंतु ना तो वहाँ प्रसाद जैसे संश्लिष्ट एकता है और ना ही निराला जैसा मानसिक संतुलन और सद्भाव। पंत सीधे सीधे नारी की उपेक्षा भी कर सकते हैं और उसके रस भरे कलश के प्रति लुब्ध प्रलुब्ध भी हो सकते हैं। आत्मसंगोपन की चेष्टा में पंत की असहज मानसिकता बराबर उजागर होती रही है। महादेवी की श्रृंगारिकता बहुरंगमयी प्रणय कल्पनाओं तक सीमित है। वैचारिक स्तर पर निराला को सांस्कृतिक मानववाद का प्रवर्तक कहा जा सकता है। प्रगतवादी काव्यधारा का सामाजिक यथार्थ यद्यपि छायावादी मानवीयता की परंपरा में विकसित हुआ है, तथापि उसकी जीवन दृष्टि उससे बहुत बदली हुई है, बहुत कुछ विजातीय जैसी है। निराला ने उसे वेदांत के अद्वैत दर्शन से जोड़कर नव्यतर एवं सांस्कृतिक बना दिया है। उन्होंने यथार्थ की विडंबना और विभीषिका व्यापक रूप में देखी और जनक्रांति की प्रस्तावना रखी, किंतु उसे वर्ग संघर्ष की संज्ञा दी जा सकी है। उनकी दृष्टि प्रतिजन पर थी, समाज के हर पहलू पर थी, न केवल लाठी टेक कर चलने वाला भिक्षुक, चिलचिलाती धूप में पत्थर तोड़ती मजदूरिन और जीर्ण शरीर वाले किसान उसकी ममता के भागीदार हैं, वरन सामाजिक तिरस्कार की पात्र विधवा, रूढ़ियों की चक्की पीसता हुआ मध्यम वर्ग और अपनी निजी सीमाओं में विवश और पंगु बने जनसाधारण के प्रति भी वह उतने ही करुणार्द रहे हैं। बौद्धिक स्तर पर उन्होंने पृष्ठ संख्या 153 अद्वैत बोध को सामान्य मानव की महिमा का स्थापक सिद्ध किया है और परिणति की भूमिका में वह सबकी अभाव पूर्ति के लिए मंगल प्रार्थना करते हैं। पंत ने भी अपने मधुर वन में अपने और जग जीवन की ज्वाला में जलकर अपने सजग स्वर्ण से जीवन की पूर्णतम मूर्ति रचने के लिए कहा था, किंतु वह उनकी अंतः प्रेरणा मात्र थी, अंतः प्रकृति नहीं। अधिकतर तो उनमें फैशन के तौर पर यथार्थ और जनात्मकता को ओढ़ लिया गया है। निराला को इस प्रकार के किसी आत्मबोधन या अंगीकरण की आवश्यकता नहीं थी। उनका यथार्थ बोध उनके आत्मबोध से भिन्न नहीं था। पंत की अपेक्षा उनका तालमेल मुक्तिबोध से अधिक बैठता है। लोक के प्रति कैसा उदार महा भाव है इन पंक्तियों में। शून्य कोश ओसों से भर दे, तरु को रश्म पत्र मर मर दे, मौन तूल को मूर्ति मुखर दे, पग पग को जग से डग तर दे। लोक मंगल की यह प्रशस्त मनोभूमि प्रसाद में भी मिलेगी। चित्राधार, कानन कुसुम और झरना की अनेक रचनाएं जनात्मक वस्तु विषय की हैं। आंसू का उत्तरार्ध तो निराला ही जैसी मानसिकता का साक्ष्य देता है। चुन चुन ले रे कन कन से जगती की सजग व्यथाएं, रह जाएंगी कहने को जन रंजनकारी कथाएं। किंतु प्रसाद के बोधात्मक विकास की मूल प्रकृति प्रत्ययशीलता, आदर्शीकरण और अमूर्तन की है, जबकि निराला में लोक अनुभावन और सम्मूर्तन की विशिष्टता है। यही कारण है कि जहाँ प्रसाद अपनी रचनाशीलता के चरम बिंदु पर दार्शनिक हो उठे हैं, वहाँ निराला ने रसित्व पा लिया है। अंतिम काव्ययुग की चार कृतियाँ, विशेषकर आराधना में उनका स्वर प्रायः ही वैदिक ऋषियों के समान निर्वैयक्तिक किंतु प्रसन्न लोक भाव से परिपूर्ण हो उठा है। सापेक्ष दृष्टि से पंत एक चिंतनशील विचारक की हैसियत से ऊपर नहीं उठ पाए। महादेवी के काव्य में इस लोक भावना की स्थिति नगण्य जैसी है। दो एक कविताएं और दो चार रचनावांश अधिकतर वह आत्ममीमांसा में व्यस्त रही हैं। गद्य में अवश्य उन्होंने अपनी लोक संबद्धता को सशक्त अभिव्यक्त दी है। लोक के साथ उनकी सहानुभूति छायावादी रंग ढंग की ही रही है। वही करुणा, ममता और आर्द्रता की विगलित सांस्कृतिक मनोभूमि, जिसे रोमानी और भावुक रचनाकार की विशेषता या की कमजोरी कह सकते हैं। यथार्थ के प्रति उनमें वह ललक नहीं जो निराला में है। मानववाद की अपेक्षा वह आत्मवाद से अधिक जुड़ी हुई है। आत्मवाद निराला में भी है और बड़े सघन रूप में है, किंतु वह महान देवी की तरह रहस्य उन्मुख ना होकर लोकात्मक हो उठा है। छायावाद के ये चारों ही मूर्धन्य कवि अद्वैत दर्शन और आत्मपरक से भावित रहे हैं, किंतु उन्हें मानववाद में ढलने का श्रेय निराला को ही है। प्रसाद ने अवश्य एक व्यापक जीवन दर्शन प्रस्तुत किया, किंतु उसमें समग्र जीवन को दृष्टिपथ में रखा गया है। अतः जहाँ एक और वह अपेक्षाकृत विशद है, वहीं उसमें यथार्थ बोध की कमी भी है, या कि उस पर अभिजात्य और परिनिष्ठित काव्य शिल्प के इतने सघन आवरण हैं कि उसकी सहसा प्रतीत नहीं होती। पंत अपनी विचारशीलता में मानववादी धरातल का आभास देकर भी आत्मलीन बने रहे हैं। पृष्ठ संख्या 154, महादेवी जी का चिंतन उनके प्रणय माधुर्य में घुल मिल गया है। प्रकृति छायावाद का एक प्रमुख वस्तु विषय रही है। एक कवि प्रकृति की ओर विशिष्ट संवेदनशीलता के साथ अग्रसर हुए हैं और इनकी अपनी अपनी अप्रोच और उपलब्धियां हैं। इन कवियों ने प्रकृति को रीतिकालीन उद्दीपन परकता और द्विवेदी युग के निष्प्राण वर्णात्मकता के जड़ता चक्र से मुक्त किया और उसके स्वतंत्र अस्तित्व, उसकी अस्मिता का आलेख प्रस्तुत किया। अब वह निर्जीव उपादान मात्र न रहकर जीवित सत्ता बन उठी और मानवीय सुख दुख की सहयोगी के रूप में सम्मानित होने लगी। मानव प्रकृति से बहुत कुछ सीखता है, उससे अनुप्रेरित हो सकता है। वह सत्य हिंदी में सबसे पहले छायावादी कविता के ही माध्यम से प्रकट हुआ है। पंत प्रकृति के इस वैशिष्ट्य के प्रति सर्वाधिक आकर्षित हुए। उनकी भाव चेतना पर प्रकृति के विविध वर्णमय रंग रूप इस कदर छा गए कि वह उनके लिए प्रत्यक्ष और सजीव आलंबन बन गई। उन्हें नारी से अधिक आकर्षण प्रकृति में अनुभव होने लगा, क्योंकि वह रंजक होने के साथ साथ मानव को विश्वोन्मुख और विश्वासात्मक बनाने में भी सक्षम है। छोड़ द्रुमो की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन। प्रसाद ने यद्यप प्रकृति की इस विशिष्टता को सबसे पहले 1910 से भी पहले पहचाना था, यद्यपि वे उससे इतने अंतरंग ना हो सके। इसके लिए प्रकृति अपनी सारी जीवंतता, रूपश्री, ताजगी और प्रेरकता के बावजूद माध्यम ही रही है। उस सत्य का माध्यम जो उनका मूल वस्तु विषय है, कोकिल, बादल, कमल, वसंत आदि अपने नैसर्गिक रंग रूप में सुंदर अवश्य लगते हैं, किंतु जो कुछ उनसे व्यंजित या संकेतित होता है, वह प्रसाद के लिए अधिक महत्वपूर्ण है, सुंदरतम है। आंसू के विशद प्रतीक योजना में इन्हीं प्रवृत्ति का प्रतिफलन हुआ है। अन्यत्र नारी सौंदर्य को उद्भासित करने वाले अप्रस्तुत पक्ष के रूप में भी उसका प्रयोग किया गया है, और कथात्मक संदर्भों में प्रेरकता तथा पृष्ठभूमि की रचना का दायित्व भी वह बराबर वहन करती रही है। वह प्रसाद की द्वितीय काव्य भूमि है, अत्यधिक सशक्त किंतु अनुषंगिक। महादेवी के काव्य में भी वह उद्दीपन पृष्ठभूमि और समांतरता के उपकरण प्रस्तुत करने में ही अपनी सार्थकता पा सकी है। संश्लिष्ट चित्रण के स्थल विरह हैं और वह उतने प्रातिनिधिक भी नहीं। निहार और रश्मि में उन्हें देखा जा सकता है। आगे की रचनाओं में वह कभी उनके पृष्ठ संख्या 155 प्रणयोपचार का साधन बन गई हैं और कभी उनसे तदात्म होकर सहभोगनी। इस प्रकार छायावादी कवियों में प्रसाद और महादेवी ने प्रकृति का उपकारक काव्य भूमि के रूप में अपनाया है और पंत ने स्वतंत्र काव्य वस्तु के रूप में। पंत का पल्लव प्रकृति काव्य की मानक कृति कहा जा सकता है। इसे युग की विडंबना कहें या पंत के मानसिक परिवेश की एकायमितता की, आगे पंत अपनी रचनाओं में उत्तरोत्तर प्रकृति से दूर होते गए हैं। यहाँ तक कि मोह कविता का रचयिता मानो युगांत में प्रकृति के अपदस्थ कर देता है और मानो उसे प्रकृति से अधिक सुंदर अथवा सुंदरतम लगने लगता है। यों प्रकृति प्रेम और मानववाद में कोई अंतर्विरोध नहीं और बहुधा दोनों एक दूसरे के पूरक ढालते हैं, किंतु पंत इस पारस्परिकता पर ध्यान न देकर एक पक्षीय बने रहे। नवीनता और हर काव्य आंदोलन से जुड़ने का मोह भी उनमें रहा ही है। इस पारस्परिकता की पकड़ निराला को भी थी और खुली दृष्टि एवं बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी होने के कारण उनके लिए दोनों का समीकरण नितांत सहज था। अंतिम युग की रचनाओं में यह तालमेल बड़ा ही प्रभावी बन पड़ा है। शीत की गहरी विभावरी में यदि उन्होंने हिम बिंदुओं से बोझिल पत्र, अरुण कमल दल तथा बंगलों में बिजली आग तपाने वाली अप्सराओं को देखा है, तो वह किसान भी उनके दृष्टिपथ में रहा है जिसकी खेती पाले से नष्ट हो गई है और जो अपनी असहाय दयनीयता में सूखता जा रहा है। ग्राम्य प्रकृति के साथ ग्रामीण जनजीवन को जोड़कर निराला ने अपनी इस विशिष्टता का परिचय आराधना में व्यापक रूप में दिया है। प्रसाद जैसी प्रतीकात्मकता उनमें नहीं, यद्यपि अपवाद रूप में दो एक स्थल रेखांकित किए जा सकेंगे। वस्तुतः प्रकृति निराला के लिए सहज रूप में ही इतनी रम्य है कि उन्हें उसका अतिक्रमण करके किसी सुंदरतर तक पहुँचने की इच्छा ही नहीं हुई। इसमें दो मत नहीं कि प्रकृति से जितना गहरा लगाव निराला को रहा है उतना पंत को भी नहीं रहा। यद्यपि वह प्रकृति के कवि के रूप में ही याद किए जाते हैं, उमड़ते और गरजते हुए बादल, बदलती हुई ऋतुएं, आमों से लदे बाग, बढ़ बढ़कर बहती हुई पुरवाई, विभिन्न वर्ण गंधों वाले फूल, दूर दूर तक लहराती हरी भरी फसलें, विभिन्न रंग रूपों वाले वन्य पक्षी, बदलती हुई दृश्य वालियाँ, प्रकृति अपनी विराट बहुरूपता के साथ निराला के काव्य में समुद्भासित हो उठी है। पंत अक्सर ऐसे प्रसंगों में अति कल्पनाशील हो उठते हैं जिसके कारण प्रस्तुत की भास्वरता तिरोहित या की गौण हो गई है। निराला में यह च्युति नहीं मिलेगी। उनके प्रकृति चित्र वास्तविक हैं, मूर्त हैं। यहाँ तक कि कुछ रचनाएं दृश्य चित्र अनेप साठ जैसी हो उठी हैं। मानवीकरण, अप्रस्तुत विधान और पृष्ठभूमि के रूप में प्रकृति का चित्रांकन उन्होंने ही जीवंत आत्मीयता के साथ किया है। संध्या सुंदरी, जूही की कली, शेफालिका, बादल राग, वन बेला आदि में मानवीकरण पद्धति का प्रकर्ष देखा जा सकता है। रूप चित्रों में भव्य से लेकर भदेश तक उपमानों का परिविस्तार है। पृष्ठभूमि के रूप में राम की शक्ति पूजा के प्रकृति चित्रण का अपना एक अलग अनूठापन है। यहाँ प्रकृति प्रसंग भूमि भी रचती है और वस्तु पृष्ठ संख्या 156 स्थिति की तीखी व्यंजना भी प्रस्तुत करती है। प्रकृति निराला के लिए साधन ना होकर साध्य है। इस सीमा तक कि सौमनस्य और उदात्तता के चरम क्षण में वह काव्य नायिका वाग देवी सरस्वती तथा परम सत्ता से अभिन्न हो उठती है। कहना न होगा कि निराला की यह व्यापक और उदार मनोदृष्टि उनके उस अद्वैत बोध से भावित है जिसने उन्हें श्रृंगार और यथार्थ की नई दिशाएं दी थी। आत्मव्यंजना की दृष्टि से भी निराला छायावादी कवियों में सर्वाधिक सहज रहे हैं। यों गीत काव्य का उदय ही आत्म अभिव्यक्ति के अदम्य आवेग से हुआ है और व्यापक अर्थ में किसी भी कवि की समूची काव्य सृजना आत्म अभिव्यक्ति कही जा सकती है, किंतु वह कवि के आत्म का साधारणीकरण ही है। उसकी वैयक्तिकता का निश्चित अवबोध उससे नहीं हो पाता। गीत काव्य की स्वानुभूति भी परकाय प्रवेश अथवा हृदय प्रसार की क्षमता के कारण प्रायः सामान्य और सामाजिक बनती गई है। वस्तुतः गीत काव्य की आत्मपरकता शैलीगत ही अधिक रही है, कथ्यात्मक बहुत कम। साहित्य के लिए यही काम्य है भी, किंतु प्रायः ही कवि अपने निजी सुख दुख के बारे में भी कहते रहे हैं जो स्वभावतः उनकी आत्मेतर अभिव्यक्तियों से अधिक वास्तविक और मार्मिक हुआ करता है। साहित्य के लिए वह भी उपेक्षणीय नहीं। गीत काव्य में इसके लिए यथेष्ट गुंजाइश थी, किंतु इसे मानव प्रकृति की विडंबना ही कहेंगे कि छायावादी कवि हिंदी गीत काव्य के प्रवर्तक होने के बावजूद अतिशय संकोचशील और मर्यादा प्रेमी थे। अपने विषय में खुलकर कुछ कहने से उनके अभिजात पर आँच आ सकती थी, अतः उनमें अधिकतर आत्मसंगोपन की प्रवृत्ति मिलती है। प्रसाद ने हंस के आत्मकथा विशेषांक के लिए जो कविता लिखी थी, वह संगोपांग और अंतर्मूर्खता का लिखित आत्मस्वीकार मानी जा सकती है। सामाजिक उपहास के भय से प्रसाद अपने निजी सुख दुख को अपने अंतःकरण में ही छिपाए रखना उचित समझते थे। कंथा का सीवन उघड़ कर उसकी असलियत जानने से होगा भी क्या? यदि उसे कहाँ ना कहीं अपरिहार्य हो उठा हो तो उसे आत्मपरकता की उस शैली में शब्दबद्ध कर लिया गया जो आत्मेतर हुआ करती है। आवश्यक नहीं कि हर आत्मपरक रचना का नायक स्वयं कवि ही हो, किंतु इसे उसके लिए छूट तो रहती ही है। प्रसाद का आंसू और पंत की ग्रंथि ऐसी ही काव्य कृतियां हैं जिसमें बीच बीच में कवि का निजी स्वा भी मुखर हो गया है। प्रसाद ने कानन कुसुम और झरना की मर्म कथा, प्रियतम नहीं डरते आदि कुछ एक कृतियों में अपने विषय में कुछ कहने का साहस किया था, किंतु आगे वह ऐसा ना कर सके। लहर के प्रसिद्ध गत मुझको न मिला रे कभी प्यार का मैं पहले ही चरण में वह हो जाता है और बात का सीधापन खत्म हो जाता है। अंतिम चरण में तो कवि उस वह को संबोधित करके उपदेश भी देता है। इसे नाटकीयता भी कह सकते हैं और बचाव का शब्द कौशल भी। महादेवी को तो इस प्रकार के अंगुली निर्देश का और भी भय था, अतः उनकी समग्र काव्य सृजना आत्म अभिव्यक्ति के रूप में होकर भी उनके व्यक्तित्व से बाहर की चीज लगती है। उनकी अपेक्षा मीरा की उक्तियों में अधिक असलियत और मार्मिकता है। महादेवी जी की अपेक्षाकृत निजी कही जा सकने वाली उक्तियाँ भी साधारणीकरण की प्रतिक्रिया से गुजर चुकी हैं। पृष्ठ संख्या 157 और अपने निर्वाह में कलात्मक प्रभाव की अंतिम छाप छोड़ती हैं। पंत से तो इसकी आशा और भी कम की जानी चाहिए, क्योंकि वह जितने संकोची रहे हैं उतने ही प्रदर्शन प्रिय भी। उनकी अति कल्पनाशीलता, शिल्प की बारीकी, बाह्य प्रकृति से मोह की उद्घोषणा तथा उत्तरार्ध में मानववाद का पक्षधर बन जाना उनका अपनी निजता से पलायन ही है। वह स्व उनके दृष्टिकोण के रूप में ही अभिव्यक्त पा सका है, जीवन की वास्तविकता के रूप में नहीं। निराला ने इस प्रकार के संकोच और संगोपन की प्रवृत्ति नहीं मिलेगी। अपने बारे में उन्होंने भी कुछ अधिक नहीं कहा, किंतु उसके पीछे उनकी व्यापक जीवनगत और साहित्यिक दृष्टि ही है, ना कि आत्मसंकोच या समाज भीरुता। अपने विषय में अधिक कहना वह क्षुद्रता समझते थे, किंतु भीतर से आवेग उठने पर उसे दबाना भी वह अस्वाभाविक मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने अपने सुख दुख, मिलन बिछोह, राग भोग और रोग शोक को अकृत्रिम किंतु प्रभावी रूप में प्रस्तुत किया है। आत्मपरक शैली का छदम ओढ़ने की जरूरत उन्हें महसूस नहीं हुई, क्योंकि दुराव उनकी प्रकृति में नहीं था। उनकी मानसिकता का पूरा साक्ष्य उनकी आत्मपरक कविताओं में विद्यमान है। अपनी मार्मिकता में ये कविताएं अप्रतिम हैं। कला वैदग्ध्य भी उनमें कम नहीं, किंतु समग्र प्रभाव प्रगीतात्मक और निजी है। वह कवि के प्रति करुणा और अनुशंसा के भाव जगाती है। अपने निर्वाह में वह उसी तरह संगोपांग हैं जिस प्रकार कवि के अन्य प्रगीत। निसंदेह निराला ने हिंदी कविता की व्यक्तिवादी धारा को सही दिशा देने का एक महत्वपूर्ण और दायित्व संपन्न कवि कर्म निभाया है। छायावादी कवियों में महादेवी का वैशिष्ट्य यह है कि वह आद्योपांत एक ही काव्य भूमि प्रणय पर अवस्थित रही हैं। इससे एक ओर जहाँ प्रणय के बहुरंगी सुकुमार भाव, क्षणों की अनुरंजनकारी और विमोहक छाया छवियों की चित्र सृष्टि हो सकी है, वहीं एक रस्ता का भी अनुभव होता है। यह एक रस्ता अभिव्यक्ति के भी स्तर पर विद्यमान है। कुछ नियत प्रतीक, कतिपय सुपरिचित लयबंध, बार बार उभरने वाले कुछ एक बिंब और एक खास मार्दव के सधे बंधे भाषिक मुहावरे, महादेवी का काव्य संविधानिक इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता है। अभिव्यक्ति की ये सीमाएं वस्तु विषय की एक रूपता का ही अनिवार्य परिणाम है।